हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। अबीर ने ज़ोया के लिए लंच प्लान किया, पर ज़ोया नहीं आई। 1.5 घंटे इंतज़ार करने के बाद वो उसे देखने उसके कमरे में गया। उसने देखा कि ज़ोया आराम से सो रही थी। ज़ोया सोफे पर बैठी हुई सो गई थी। सोई हुई वो बहुत प्यारी लग रही थी। कुछ पल ज़ोया को देखने के बाद अबीर आगे बढ़ा और उसे गोद में उठा लिया। अबीर को लगा कि ज़ोया सोफे पर आराम से नहीं सो पा रही है, इसलिए उसने उसे गोद में उठाकर बेड पर लेटाने का फैसला किया। पर जैसे ही वो उसे बेड पर लेटाने लगा, ज़ोया ने आंखें खोल लीं। अबीर की बाहों में खुद को पाकर ज़ोया का पारा चढ़ गया और वो झटके से उतर गई। उसने अबीर को कड़ी नज़रों से देखना शुरू कर दिया। ज़ोया के अचानक आंख खुलने पर अबीर थोड़ा शर्मिंदा सा हो गया। ज़ोया को इस तरह देखकर उसने अपनी नज़रें नीची कर लीं। ज़ोया झटके से उठ खड़ी हुई और अबीर की ओर देखते हुए बोली, ये सब क्या है मिस्टर राठौर, आखिर आप करना क्या चाहते थे मेरे साथ? ज़ोया की बात सुनकर अबीर को बहुत बुरा लगा। उसने कहा, नहीं नहीं मिसेज राठौर, आप गलत समझ रही हैं। आप सोफे पर सही से सो नहीं पा रही थीं, इसलिए मैं आपको यहाँ लेटा रहा था। प्लीज़ मिस्टर अबीर सिंह राठौर, आप रहने दीजिए, मैं अच्छी तरह जानती हूँ आप क्या कर रहे थे। आप मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने आपसे कहा था, जब भी आपको मेरे जिस्म की ज़रूरत हो तो आप आ सकते हैं और अपनी मनमानी पूरी कर सकते हैं, तो इस तरह से चोरी चोरी मुझे परेशान करने की क्या ज़रूरत थी? क्या आप नींद में मेरा फ़ायदा उठाना चाहते थे? ज़ोया के इल्ज़ाम सुनकर अबीर तड़प गया। उसकी ज़बान से एक शब्द नहीं निकल रहा था, पर ज़ोया बोलती रही, मैं जानती हूँ आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और अब आप मुझे बिज़नेस भी सिखा रहे हैं, मुझे मेरे पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वो सब कुछ भूल जाऊँगी जो आपने मेरे साथ किया था। और मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, अगर आपको मेरे जिस्म की ही ज़रूरत है तो आप कभी भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने मतलब के लिए, लेकिन प्लीज़ इस तरह से नहीं, इस तरह से आप मेरी झूठी मदद दिखावा मत कीजिए, प्लीज़। ज़ोया की बातें अबीर के सीने पर खंजर चला रही थीं। अबीर का पारा भी चढ़ गया। उसने झटके से ज़ोया के बालों को कसकर पकड़ लिया और उसका चेहरा अपनी ओर उठाते हुए बोला, वो उसके बहुत करीब हो गया था। उसकी सांसें ज़ोया की सांसों से मिलने लगी थीं। वो बोला, आखिर तुम समझती क्या हो अपने आप को? मिस वर्ल्ड हो तुम, मिस इंडिया हो, तुम तो एक मामूली लड़की ही हो ना, क्यों बार बार मेरे सब्र का इम्तिहान लेती हो? क्यों? मैंने तुमसे कहा ना, मैं सिर्फ तुम्हें सोफे पर से बेड पर लेटा रहा था ताकि तुम आराम से सो सको। यू डैम इट, और ये क्या तुमने बार बार लगा रखा है, मेरे जिस्म से खिलवाड़ कर लो, खिलवाड़ कर लो। बीवी हो तुम मेरी, तुम पर और तुम्हारे सो कॉल्ड जिस्म पर मेरा पूरा पूरा हक है, समझी तुम? अगर मुझे कभी भी ज़रूरत होगी तो मुझे तुम्हारी परमिशन की ज़रूरत नहीं होगी तुम्हारे करीब आने के लिए, समझी तुम? और एक और बात, कान खोलकर सुन लो, दूसरी बार मुझ पर इस तरह के इल्ज़ाम मत लगाना कि मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है। हाँ, मैं मानता हूँ उस दिन मुझसे गलती हो गई थी मुझसे गलती, लेकिन मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में आज तक किसी दूसरी औरत को और देखा तक नहीं है, मैंने किसी को आज तक छुआ तक नहीं, छूना तो दूर की बात, मैंने किसी को इस नज़र से देखा तक नहीं है, समझी तुम? और तुम, जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था उसी दिन से तुम मेरे दिल में बस गई थी, जानती हो तुम इस बात को? और क्या, और क्या, तुम्हें पुराने अबीर सिंह राठौर और आज के अबीर राठौर में फ़र्क नज़र नहीं आता, जानती भी हो तुम? लोगों की हिम्मत नहीं होती थी अबीर सिंह राठौर के सामने खड़े होने की भी, सबके सब सर झुकाकर खड़े रहते थे, लेकिन आज तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे इतना बदल दिया है कि मैं अब लोगों को लोगों की नज़रों से देखने लगा हूँ, उन्हें कीड़े मकौड़े नहीं समझता हूँ मैं, अब मैं इंसान बन गया हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत में, सिर्फ तुम्हारे और हमारी बेटी अरीबा के लिए। अबीर की बात सुनकर ज़ोया चौंक कर बोली, ये अरीबा कौन है? अबीर थोड़ा हकलाते हुए बोला, वो हमारी बेटी है, मैंने उसका नाम अरीबा रखा है, अरीबा सिंह राठौर। ज़ोया अबीर का मजाक उड़ाते हुए बोली, वाह, आपने मेरे बिना मेरी बेटी का नामकरण भी कर लिया और आप मुझे आज बता रहे हैं, आखिर आपकी हिम्मत कैसे हुई अकेले मेरी बेटी का नाम रखने की, और आपने मुझसे पूछा तक नहीं एक बार भी? वो मेरी भी बेटी है और उसका नाम मैं अपने हिसाब से रखूंगा और उसे मैं इस पूरी दुनिया की नंबर 1 बिजनेस वुमन बनाऊंगा। तुम देखना, तुम्हारी बेटी तुमसे भी ज्यादा बड़ी बिजनेस वुमन बनेगी और वो इस दुनिया के मर्दों को अपनी उंगलियों पर नचाएगी, सब मर्द उसके कदमों में होंगे। मैं अपनी बेटी को इतनी ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है, और रही बात उसका नाम रखने की, तो वो मेरी बेटी है, उस पर मेरा हक है। मैं उसका नाम कुछ भी रख सकता हूँ और तुम उसका नाम नहीं बदल सकती हो, ठीक है? और मुझे तुमसे किसी बारे में कोई बात नहीं करनी है। तुम कल सुबह ठीक 9 बजे तैयार हो जाना, मैं जा रहा हूँ अब, और तुम्हारा लंच मैं तुम्हारे कमरे में भिजवा दूंगा। इतना कहकर अबीर गुस्से से जोया के कमरे से चला गया। जोया हैरानी से उसे देखती रही और मन ही मन में दोहराया, अरीबा सिंह राठौर। दूसरी ओर अरमान अपनी बहन मेहर के साथ अपने ऑफिस पहुंच चुका था। अपने ऑफिस का नज़ारा देखकर वो बहुत चौंक गया। उसका ऑफिस और भी बड़ा और खूबसूरत हो गया था। मेहर ने कंपनी के पास की जितनी भी जमीन थी वो सब खरीदकर अरमान के ऑफिस से मिला दी थी। अरमान अपनी बहन को तारीफ भरी नज़रों से देख रहा था। आज उनकी 3 बजे इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। दोनों बहन भाई उसी की तैयारी कर रहे थे। प्रोजेक्ट की कीमत करीब 200 करोड़ के आसपास थी। अरमान किसी भी कीमत पर वो प्रोजेक्ट अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। 3 और कंपनियों ने भी उस प्रोजेक्ट के लिए दावा किया था। अरमान और मेहर तैयार होकर टेंडर ऑफिस की तरफ निकल चुके थे। रास्ते में अरमान ने मेहर से कहा, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी जल्दी इतना सब कुछ सीख लोगी और इतने अच्छे तरीके से सब संभाल लोगी। मुझे तुम पर गर्व है मेरी बहन, मुझे तुम पर गर्व है। उसने मेहर को गले से लगा लिया। मेहर ने अरमान से अलग होते हुए कहा, भाई मैंने कुछ गलती भी की है और कुछ सही तरीके से भी किया है। अरमान ने उसे बीच में ही चुप कराते हुए कहा, तुम्हें कुछ भी बताने या कहने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ जानता हूँ। तुमने जो किया वो राजवीर की वजह से किया है, ये भी मैं जानता हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मैं तुम्हें इतना कहना चाहूँगा कि जिंदगी में किसी ऐसे बंदे का साथ पकड़ना जो तुम्हें हर सिचुएशन में हर हाल में खुश रख सके और कभी तुम्हें छोड़कर ना जाए, चाहे तुम अमीर हो या फिर गरीब हो, हर हालत में तुम्हारे साथ हो। अगर कोई तुम्हें ऐसा मिलेगा तो तुम सब कुछ भूलकर उसके साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना। मेहर ने हाँ में सर हिलाया और अरमान के गले लग गई। जल्दी ही वे दोनों टेंडर ऑफिस पहुँच गए। वहाँ अच्छी खासी भीड़ लगी हुई थी। ये प्रोजेक्ट कई कंपनियों के लिए बहुत अहम था, लेकिन केवल 3 कंपनियों को टेंडर के लिए चुना गया था। कुछ छोटी कंपनियों के लोग नाराज होकर प्रोटेस्ट करने लगे थे। अरमान की गाड़ी ऑफिस के अंदर पहुंची। गर्म माहौल देखकर वे दोनों चौंक गए और एक नज़र उन लोगों पर डालकर अंदर चले गए। वे देर नहीं करना चाहते थे। उन 3 कंपनियों में से अरमान की भी एक कंपनी थी। अरमान को पूरा यकीन था कि टेंडर उसे मिलेगा। टेंडर घोषित करने वाले सभी लोग मौजूद थे। एक एक करके टेंडर खुलने लगे। कुछ छोटे टेंडर खुले, लेकिन जब 500 करोड़ वाले प्रोजेक्ट की बात आई तो उनमें से एक ने खड़े होकर ऐलान किया, ये 500 करोड़ वाले प्रोजेक्ट का टेंडर जाता है सिंघानिया इंडस्ट्रीज को।
ये सुनकर अरमान और मेहर चौंक गए। अरमान गुस्से से बोला, ये सब क्या है? ये क्या क्या तुम लोगों ने किया? तुम लोग बिके हुए हो? आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कंपनी का टेंडर किसी और के नाम करने की? कौन है ये सिंघानिया? मैं तो आज तक इसका नाम नहीं सुना, और जबकि यहाँ पर कोई मौजूद ही नहीं है। अरमान का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वो टेंडर घोषित करने वाले का गिरेबान पकड़ते हुए बोला, कौन है ये सिंघानिया? जवाब दो मुझे। आखिर किसकी इतनी औकात हो गई कि अरमान ठाकुर की कंपनी के सामने टिक सके? बता मुझे कौन है वो। तभी पीछे से एक आवाज आई, इतनी भी क्या जल्दी है मिस्टर ठाकुर हमसे मिलने की? पीछे मुड़कर देखते ही अरमान और मेहर बहुत चौंक गए। पीछे राजवीर सिंघानिया खड़ा था।